संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के दान में वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। ये पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आरंभ करनी है। जीवा जीवा अधिकार में ये आत्मा वर्णादि और रागादि भावों का स्वामी नहीं है, अनुरूप नहीं है, ये बात सिद्ध की थी। और कर्ता परम अधिकार में ये बात सिद्ध की कि उनका ये कर्ता भोक्ता नहीं है, इस प्रकार उनके साथ इसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अंत में जो अपन ने कर्ता कर्म अधिकार के कलश पकड़े थे, तो उसमें आचार्य श्री ने कितनी खेद के साथ ये बात कही थी कि ये बात अत्यंत स्पष्ट है, फिर भी न मालूम यह जगत ऐसे मुंह में क्यों नाचता है, यानी इनका कर्ता भोक्ता बनता है। अब आचार्य थोड़ी और बारीक बात में जाते हैं, क्योंकि जब तर्क और युक्तियों से इसे समझाया और शास्त्रों के प्रमाण निकाल निकाल के बताए, तो ये तो कहता मैं मान लेता हूं कि न मैं इनका कर्ता हूं न मैं इनका भोगता हूं, लेकिन ये बाहर से तो मान लेता है, तो अंदर में जो इनके कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि पड़ी है, वृत्ति पड़ी है, वहां से वो बात उखड़ती नहीं है। जब कोई बातचीत में बहस करे ना, तो बहस में कमजोर पड़ जाए तो मान ले, अंदर से ये बात स्वीकार नहीं होती है। अपन सब समझाते हैं ना, तो जैसे और दुनिया में लाखों लोग हैं, वैसे ही अपने स्त्री पुत्र आदि हैं, क्या फर्क है उसमें। जैसे परवे हैं ऐसे ही परवे हैं, वो खाते हैं तो अपने पेट में नहीं जाता है, ये खाते हैं तो अपने पेट में नहीं जाता। सारे पर व्यक्तियों से समझाओ तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने नहीं है, तो ये अपने हैं, तो ये कितना ही प्रतिकूल आचरण करता हो, अपन को गालियां बरतता हो, मारता पीटता भी हो, क्यों तो भी इनमें से अपनापन छूटता नहीं है और तो उनमें अपनापन आता नहीं है। तो उसको तो मैं ऐसा देखता हूं कि भाई आगम के की मार से और तर्कों के प्रबल प्रहार से यदि ये किसी तरह स्वीकार भी कर ले, तो वो ऐसे ही होता है जैसे कि मुसलमान लोग शोरबा पिला करके हिंदुओं को मुसलमान बना लेते थे, लेकिन वो अंदर से वो उनकी मान्यता थोड़ी जबरदस्ती से कोई किसी को बनाएगा तो उसकी मान्यता थोड़ी बदल जाती है, तो मान्यता नहीं बदलती है। तो जिन कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है, ये बात थी ना समझाई थी, तो वो कहता है कि वो कर्म का मैं कर्ता तो नहीं हूं, लेकिन वो कर्म तो है ना, पुण्य कर्म और पाप कर्म, और उनमें कुछ कर्म अच्छे हैं और कुछ कर्म बुरे हैं। यानी मैंने नहीं किए हैं, वो मेरे नहीं हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूं, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, लेकिन है तो और सभी धर्मधारा प्रसन्न थोड़ी चलोगे, कुछ काम अच्छे हैं और कुछ काम बुरे हैं। तो ऐसा उन कर्मों में इस तरह का भेद डाल के तो कुछ कर्मों का कर्ता बनना चाहता है, और ये समस्या बहुत बड़ी है, खासकर ये प्रवचनकारों को, विद्वानों को। वे भी जब मैंने कल भी कहा था ना, फिर ऐसा रख लिया था कि ठीक है, वो पुण्य पाप दोनों ही कर्म हैं, दोनों ही आत्मा को बंधन में डालने वाले हैं, लेकिन वो तो छूटेगा तो पहले तो पाप छूटेगा ना, तो बाद में पुण्य छूटेगा ना, तो वो क्रिया में छूटेगा तो छूट जाएगा, तो मान्यता में तो एक साथ छूटेगा क्या नहीं, तो मान्यता में जो एक साथ छूटने की बात है उसको तो गौण कर देता है, और क्रिया में वो आगे पीछे छोड़ेंगे उनकी मुखता करके, तो अभी नहीं छूटेंगे, वो तो कहते नहीं छूटेंगे, तो अभी नहीं छोड़े ना, देखो सुनना, नहीं छूटेंगे से नहीं छोड़े इस पर आ जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं? बोलो कैसे नहीं समझ में आया अंतर? वो तो उससे ज्यादा कि उनके छूटने में क्रम है ना, और ये कहता है छूट अगर पहले दे छोड़े मैं बाद में दे छोड़, तो पहले को तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं है तो छोड़ेगा क्या? अब नहीं फिर और गहराई से बात छूटो कि वो कहते हैं देखो आज तक तुमने पर में कुछ नहीं किया और ना तुम कर सकते हो, यानी भविष्य में आज तक जिसे तुमने करना मानते हो वो कुछ नहीं किया तुमने और ना तुम कर सकते हो, तो वो कहता ठीक है आगे पीछे छूटेंगे ना, इतना तो तुमने माना था कि हाँ, तो उनको अभी हम पहले छोड़ देते हैं बुरे कर्मों को और अच्छों को बाद में छोड़ेंगे। हमने तो ये कहा कि तूने किया ही नहीं है, और वो कहता है अब हम छोड़ेंगे तुम, तो छोड़ा करो तुम्हें किए हम तो छोड़े ना क्रिया में, यानी तेरे को मान्यता में तूने ऐसा माना है कि मैंने किए हैं, तो तेरे को मान्यता में ही छोड़ना है। ये अंतर समझ में नहीं आता है, हम उनने तो कहा बात करते तो छोड़ा तो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग पुण्य को तो छोड़ने की कहते हैं, लेकिन लोगों ने पाप कर तो छोड़े नहीं, वही धंधा पानी वही झूठ बोलना वही ये सब चल रहा है। वो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो श्रद्धा के लेवल के सम्मय दर्शन की बात श्रद्धा के लेवल की है, वो उसे पकड़ता ही नहीं है, उसमें उसे कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो या तो करें या नहीं करें। तो ठीक है कल से कोई ऐसा नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे बोलने की बात क्या है, बोलते हुए तुम हो ही नहीं, अभी तो सिर्फ ये मानने की बात है कि हमने, क्योंकि आज तक तूने जो इतना ढेर लगा रखा है कि मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया, देखो तुमने वो कुछ किया ही नहीं, भविष्य की हम बातें क्या कह रहे हैं अभी, ऐसी अंतर समझ में आया ना, हम तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, वो भविष्य की बात करता है। ठीक है कल से नहीं करेंगे, कल से नहीं करेंगे, तो हम भी इतने आक्रांत रहते हैं कि जब उसकी प्रेरणा देते हैं पुण्य करने की, तब हमको ये विकल्प नहीं आता है कि गुरुदेव जो है साथ में बताते जाएं कि इसे धर्म नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कर्म कटेंगे नहीं, ये बताते जाने का कभी किसी को विकल्प नहीं आता। और अब तो हमारे ऐसे कहने लग गए कि तुमको ये लाभ होगा और जो लाभ होगा, तो पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा पुण्य, पति करेगा तो पति को मिलेगा पुण्य, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा पुण्य, ऐसे जितने पत्नियों की जेब काट काट के छुपा छुपा के पैया छुपा के रखे हैं वे हमें दे दो, ये अपने विद्यार्थियों के कामों से मैंने सुने हैं, मैं क्या किया हमने, ये किया है हमने, वो निमिचंद काका थे ना, अब तुम लोगों ने शांति आपने तो देखा ना, तो वो जब वो बोलते थे ना गुरुदेव की स्तुति, कांजी स्वामी की स्तुति गुजराती में बनाई थी पंडित हिम्मत भाई ने, और वो शांति चर्चा के टाइम पर पहले बोलते थे, तो बोलते में ऐसी पंक्ति आती थी कि आदास ना जीवन सल्पित तने नमू हूं, उसमें एक पंक्ति क्या थी, आ दास ना जीवन शिल्पी तमें नमु हूं, कि इस दास का मैं गुरुदेव तुम्हारा दास हूं और इसके जीवन की शिल्प जो जीवन की रचना आपने की है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आज के लोग कहते हैं ना अपने हम तो जो कुछ भी हैं आज वो आपकी कृपा से हैं, आपने ही हमें बनाया है, तो जो कुछ है इसमें बहुत दम है, वो ये मानता है मैं बहुत महान हूं, ऐसा कहते कि आपकी कृपा से ही बना हूं और आपने ही बनाया है, जो ऐसा कहते ये कहने में रस नहीं है, उसे ये कहने में रस है कि मैं बहुत महान हूं।
क्या
अंतर समझ में? आदास ना जीवन शिल्पी तने नमू हूं। आप क्या समझे ना? मैं इस दास के जीवन शिल्पी आप हो। तो वो ये कहते थे कि गुरुदेव को क्यों बदनाम करते हो? कि तुम जैसे नालायक बनाए हैं गुरुदेव ने, क्या तुम जैसे हो तो ऐसे उसको चुना कि उनको बदनाम करना नहीं है। एक बहुत यहां चित्र बनाया तो बिल्कुल गंदा चित्र है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो आपने आपने जो मुझे सिखाया उसकी वजह से मैंने ये बनाया, आपने जो सिखाया मैंने सिखा। ये पुण्य को तो धर्म कह रहा है, ये पेड़ नहीं कह रहा है, मुझे जेब खाली कराने की बात नहीं करता है, घर में सूट डालने की बात कर रहा है। पत्नी देगी तो पत्नी का हो तो पति की जेब में से चुरा के देगी तभी तुझे पुण्य अलग से लग जाएगा, और पत्नी का देगा उसकी अनुमोदना करने से लग जाएगा, ऐसा नहीं समझाते। मैंने तुम चुराओ और चुरा चुरा के दो, और बच्चे भी ऐसे भाई साहब हमने हमेशा इनने पढ़ाया है। मैं कहता भैया अरे ऐसा कब पढ़ाया था? अच्छा है छाबरा जी तो ये कहने लगे कि हमें नहीं है, हम हमारे आपके सस्ते नहीं है, हम नहीं चाहते क्या हमें तो इसमें नहीं करना पड़े। यानी एक वो ये कह रहे हैं कि एक दो दूसरे का कर्ता ही नहीं है, तो एक कर्ता नहीं है ये बात त्रिकाल की है। तीन काल की बात है। अब अभी जो भूतकाल की क्रियाएं तुमने कभी माना कि मैंने किया है, तो पहले तो उससे इंकार करो कि मैंने कुछ नहीं किया। तो हम अपनी कमाई दिखती है ना, मैंने ये किया, देश मारे बनाया, हॉल बना दिया, ब्रेक बना दिया, ब्रेक भी बना दी, ये सब ये ढेर को पहले इसमें मैं कुछ लगाऊ। वो प्लाइंट प्लाइंट छोड़ दो, वो तो मैंने जो किया सब क्रिया है। अब भविष्य में नहीं करूंगा, तो भविष्य में नहीं करूंगा तो तुम कर सकता हो तो नहीं करूंगा वाली बात है। ये कहीं नहीं आया था, इसलिए भूतकाल में किया था भविष्य में नहीं करूंगा ये बात आई कहां से? ये तो जो आलोचना होती है ना, आलोचना पाठ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ये वो तो मुनि दशा का वर्णन है। वो उन्हीं के लिए शास्त्रों में वर्णन है कि वो जो चारित्र मोह के उदय से पर्याय में जो कुंडलियां हुई वो उनकी आलोचना उनका प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण है। और ये बात श्रद्धा के लेवल पर चल रही है क्या? दोनों में अंतर है, समझ में आया ना? उसमें भी यही लिखा ना कि मैंने हिंसापन झूठ जो चोरी परिवंता शूद्र को चोरी आरंभ परिग्रह धीमे पनपावरी आवेद कीने आगे किए किया ना। तू किसी को मार ही नहीं सकता, हिंसा हुई ही नहीं, तू झूठ बोल ही नहीं सकता, तू चोरी कर ही नहीं सकता। असमझ में आया तो यह बात है। इसलिए वो कहते हैं दुख अथ एक कर्म एक सबसे अब ये एक कर्म कर्म तो एक था, द्विपात्री रूप दो देश बनाए हैं उसने एक कर्म में। पुण्य पाप रूपे में प्रवेशती और पुण्य पाप के रूप में वो स्टेज पर प्रवेश करता है, और पुण्य पाप के रूप में प्रवेश करता है वो पाप छोड़ने लायक है और पुण्य ग्रहण करने लायक है, ऐसा भेद उसने करता है। और आचार्य कहते हैं कि पूरा कर्म ही छोड़ने लायक नहीं, किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। वो कर्ता कर्म अधिकार और जीवा जीव अधिकार की बात है ना, तो उसका ही अगली बात है ना। पर इस प्रकार अब तक भगवान आत्मा को पर पदार्थ और उनके आश्रय से अपने में आत्मा में उत्पन्न होने वाले निर्वाग देश आदि भावों से एकत्व निमत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छुड़ाकर आत्मा सन्मुख करने का प्रयास किया गया है। अब इस पुण्य पाप अधिकार में यह बताते हुए कि मुक्ति के मार्ग में पाप के समान ही पुण्य भी है जैसे मान लेते हैं कि पाप के समान कहां से निकला शांति जी, दोनों एक ही करे ना, दोनों एक ही ना, एक ही बना पाप के समान आ गया। इस अधिकार को आरंभ करते हुए आचार्य आत्मख्याति में जो वाक्य लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है, अब एक ही कर्म पुण्य और पाप इन दो पात्रों के रूप में रंग मंच पर प्रवेश करता है। ध्यान रहे यहाँ पात्र यानी अभिनेता एक है और उसने दो रूप धारण कर रखे हैं। जिस प्रकार एक पात्री नाटकों में एक ही पात्र अनेक रूपों में बात करता है, उसी प्रकार यहाँ एक ही कर्म पुण्य और पाप इन दो रूपों में प्रस्तुत हो रहा है। जीवाधिकार में पात्र दो थे, उन्होंने मिलकर एक रूप धारण किया था, यहाँ पर उससे विपरीत कर्म एक है, उसने पुण्य पाप एक दो रूप धारण कर रखे हैं। वहाँ कर्म वह कर्म यहाँ डबल रोल में है, इतना एक फर्क पड़ गया है। बस यहाँ हमको सिर्फ ये बताना है पाप बुरा है ये बताना नहीं है, पुण्य और पाप दोनों ही एक से हैं, दोनों ही बुरे हैं ये भी नहीं कहते एक से हैं, और दोनों ही का तू कर्ता भोक्ता और स्वामी नहीं है। हमारे सार की पूरी टोन ही है, क्या फिर कहता हूं ना क्या जीवा जीवाधिकार में बताता ये तू नहीं है ये तेरे नहीं है, और यहां बता तू करता नहीं है भोगता नहीं है। तो अब ये दोनों प्रकार के कर्म से चार प्रकार से तेरा संबंध नहीं जोड़ना, और ये दो प्रकार का भेद करके और फिर कहता है एक को छोड़ना और एक को रखना। जब उनके हम कर्ता भोगता है ही नहीं तो उसमें दो प्रकार के भेद करने का प्रयोजन क्या है, एक मार्ग में बिंदु ये है देखो तो वो दो प्रकार का है ना, हाँ है, लेकिन तू ये दो प्रकार के भेद की चर्चा क्यों करना चाहता है? मैं इसके लिए प्रधान भेदा करता हूं तो जो कुछ महिलाएं बहुत चतुर होती हैं तो वो कहती हैं कि मैं तो सब्जी लेने शाम को जाती हूं, सुबह नहीं जाती हूं। क्यों? सुबह जो सब्जी जिस भाव मिलती है शाम को वही सब्जी आधे भाव में मिल जाती है क्या? और उनको तर्क ये होता है तब शाम को हो रही रात हो रही है ना, तो फिर रात में नहीं बिकेगी तो सुबह बासी हो जाएगी तो खराब हो जाएगी तो बिकेगी नहीं, इसलिए वो कम कीमत में आधी पर्दी में करके खत्म करके देना चाहते हैं। तो अपन को वही जो चीज सुबह आप 200 रुपये किलो लाए थे मुझे पता नहीं भाव पाओ, मैं तो अंदाज से बोलता हूँ, 300-400 रुपये किलो में मिल जाती है। उनको बहुत होशियार समझते ना, अब मैं कहता हूँ कि तुम होशियार हो तो वो शाम को फ्री की चीज 10 रुपये में मिलती है, 20 की 10 रुपये में नहीं मिलती है, फ्री की वो 10 रुपये मिलती। क्यों? कि वो सुबह से जो आदमी आया वो एक एक दाना छाटता है ना, मैंने ज्यादा खरीदी नहीं है सब्जी कभी, दूर दूर से बैठे बैठे देखा होगी कोई भी लेता है तो हर दाना उठा उठा के छाट छाट के ही लेता है ना, तो जितने लोगों ने ली उसमें वो उतने पीस छट गए ना, तब माल तो रिजेक्टेड बचा रहा, उसी में वो माल जो बचा है वो बिल्कुल रिजेक्टेड माल है, सड़ा गला ये और वो और वो। अब वो कहते यानी कल सुबह सस्ती इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वो बासी हो जाएगी, अब तू रात को तो खाता नहीं है, अब तेरे घर में भी तो बासी होगी ना, तेरी बहुत कसर गई होगी तो सुबह तो कर जाएगी पूरी। और तीसरी बात वो आधा सोखक सड़ा था तो हमने काट के फेंक दिया, इतना सा हिस्सा भाव तो आधा हो गया और काटना पड़ा इतना सा तो बाकी तो रह गया, लेकिन भैया वो सर तो पूरे ही गया है, वो उतना दिख रहा है और बाकी अभी दिखता नहीं है, 2 घंटे में वो दिखने लगेगा समझे ना, जब कैंसर हो जाता है ना तो इतना काट के नहीं फेंकते हैं, तो वो तुम्हें सड़ा सड़ा ही जिसे फेंकना ही है तो मफत का माल है, यदि फकाई और लगेगी तो कूड़ा करके ढो जाएगा, वो तू लाया है 200 रुपये किलो में तो कहता हूँ 20 का माल 200 रुपये में गया है। तो दो भेद जो तुम करता है उसका क्या अर्थ है, वो कहते हैं क्योंकि तुम्हें छांटना है, कुछ को तो छोड़ना है और कुछ को रखना है, कुछ का कर्ता बनना है और कुछ का कर्ता नहीं बनना है, ख्याल में है ना, पाप करके भी पाप का कर्ता नहीं बनना है और पुण्य नहीं करके भी पुण्य का कर्ता बनना है, ऐसा लिखा ना, पाप के फल को ये सारा जगत चाहता नहीं है फिर भी पाप करता है और पुण्य के फल को चाहता है फिर भी पुण्य नहीं करता, ऐसा एक नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है, किसी को याद हो तो बोलो, पुण्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, ऐसा ना क्या, पुण्य के फल को चाहते हैं और पाप करते हुए भी, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जन्तवा, ऐसा ऐसा संदेह है पूरा, ख्याल नहीं ना, वो तो नीतिकार का है, वो कहते तुम जो चाहते हो वो करो ना, करता पाप है और पुण्य के फल को चाहता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं, जिनका कर्ता आत्मा है ही नहीं, ये करने लायक है नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कर्मण योग की भाषा है, ये अध्यात्म की भाषा नहीं है क्या, अब इसको क्या करना है कि उसको दो टुकड़े करके कोई सड़ा सड़ा फेंकना है और अच्छा रखना है, तो आचार्य पहले ही कहते हैं कि जब ये कर्म एक ही जाति के हैं तो उसमें ये अच्छे और बुरे का भेद करने है तेरे को क्या प्रयोजन है, ये जो चीज अपनी है ही नहीं तो उसमें अच्छे बुरे का संबंध भेद करने से क्या फायदा है, फिर और थोड़ी गहराई में जाओ कि चारों तरफ के संबंध जिसको हमारे नहीं है, चारों माने कौन कौन से, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोगवित्व, तो दोनों के बीच में बज्र की दीवार है, यानी ना वो हमारे हैं ना हमारे हो सकते हैं ना हम उनके कर सकते हैं उनमें कुछ और ना उन्हें भोग सकते हैं, तो इतना नक्की हो गया तो अब वो चाहे वो अच्छे हो और चाहे वो बुरे हो हमें उससे क्या लेना है, इनमें कुछ हो सकता होता तो हम ऐसा भेद करते, पुण्य पाप अधिकार की जो मेन थीम है ये है दादा, वो पुण्य भी करने लायक नहीं है पुण्य भी नहीं करना चाहिए नहीं है क्या, कहते जिससे हमें कोई भी संबंध नहीं है तो उस संबंध के बारे में फिर ये अच्छे और बुरे का भेद करने का तेरे को क्या प्रयोजन है, निश्चित रूप से तू उसमें कुछ ना कुछ के साथ एकत्व महत्व का संबंध जोड़ना चाहता है, इतनी सी बात है तक। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि हर एक आदमी को अपने बच्चों की शादियां करनी है, नई उम्र हो तो खुद की भी करनी हो सकती है, लेकिन मैं उदाहरण जानबूझ करके अपने बच्चों की पोतों की करनी है ये देता हूं कि जिससे कि उदाहरण में लोगों को गंदगी न दिखे और वो सही तरीके से समझ रहे हैं, क्यों कि हमें अपने बच्चों में बच्चे बच्चियों की संबंध करने हैं, तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आदमी की ऐसी निगाह बन जाती है कि जैसे अपना लड़का है और तो लड़की चाहिए तो जो सब लड़कियों को देखेंगे उस दृष्टि से तो कौन है, ये ठीक दिखती है, किसकी है, कहां की है, पता लगाओ, इसकी कुंडली मंगाओ, चूजा मंगाओ, आजकल क्या मंगाते हैं, बायोडेटा है क्यों, और लड़की हो तो लड़के के, लड़की हो तो लड़की, ऐसा निगाह ऐसी उनकी ऐसी निगाह खराब हो जाती है, इसमें जो अच्छी करोगे खराब ढूंढते रहते हैं। तो अभी एक लड़की लड़के का संबंध है, देखा लड़का किसका है, अभी लड़की के लिए तो किसी आदमी ने एक आग और उसकी सगाई हो गई है, क्यों? तो सज्जन आदमी होगा तो एक सेकंड में अपने विकल्प को तोड़ देगा, बात खत्म कर देगा। और जो बेईमान होंगे तो क्या कहेंगे, हो गई होगी, बताओ है तो किसकी, क्या किसका है लड़का, सब सगाई हुई हो जान, क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम सब नंबर लेंगे, तुम तो बताओ क्यों, वो कितना मिलने वाला था, 1 करोड़, मैं 5 करोड़ दूंगा, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, तुम तो बताओ, लाओ देखो बात, ऑफर तो थो क्यों। तो ये महाबेईमान है ना, तो वो कभी कराई शादी को भी वो तोड़वाना चाहता है, और इन बेईमानों का कोई ठिकाना नहीं है, यदि इनसे ये भी कह देते कि वो उसकी तो शादी भी हो गई है तो भी कहते कोई बात नहीं है। अब मतलब किस लोग ये लोग कह रहे हैं कि जब जिसके सामने जिसका हो गया है होने की संभावना है ही नहीं, फिर वो अच्छी है बुरी है किसकी है कैसी है कहां पे पढ़ी लिखा है लड़का क्या करता है क्या मतलब है, उससे मैं आज जानना चाहता हूं क्यों। तो बिल्कुल अंदर की बेईमानी को बताता है या नहीं बताता है, उसके बाद भी उसकी गहराई में जाना। तो आचार्य कहते हैं जब ये नक्की हो गया कि कर्म मैं आज तक मैंने कर्म का करता हूं, दुर्कर्म का कला था ना, न ज्ञानी न अज्ञानी कोई करता है ही नहीं, भोगता ही नहीं है, स्वामी नहीं है, तो फिर उनमें अच्छे बुरे के भेद की जो बात है वो तेरे हृदय की बेईमानी को बताती है। ठीक है, तो भेद क्यों करता फिर अच्छा बुरा, डाकुओं में भेद होता है अच्छे बुरे का, लुटेरों में भेद होता है अच्छे बुरे का, नहीं सब उसको देखो घोड़ा घास से आदि करेगा तो खाएगा क्या, तो दुकानदार लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, यानी वो लूटने का अपना अधिकार समझते, अरे भाई उचित मुनाफा लेना ये तो बहुत लूटना थोड़ी है, ये तो देश की और समाज की सेवा है। क्यों सेवा है, क्योंकि जहां वो चीज है और जहां वो भोगता है वहां तक उसने वो पहुंचाई है, तो जो बीच में खर्चा आएगा और उसके बीच में वो खाना खाएगा उसका इंतजाम उसी में से करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कहां अन्याय है। बोलो गलत नहीं, यदि आप यहां एक दुकान खोलें तो उचित भाव की कि बिल्कुल इसमें जो 10% के मुनाफा से और हम सबको उपलब्ध कराएंगे, तो आपने ये समाज की सेवा करी ना, क्यों कि जो दूने दूने पैसा जो मिलते हैं अच्छा माल नहीं मिलता है, क्यों तो हमने वहां पर यहीं पर खोल के और उपलब्ध करा दी सबको और बढ़िया से बढ़िया चीज, वो बेईमानी नहीं है, इसका नाम घोड़ा घासी आदि करने की बात है, तो वो तो लूटना चाहता है, वो लूटने की जो व्यापार लूटना नहीं है, व्यापार तो बहुत बड़ी सेवा है देश की, कि जहां किसान को कहां एक एक के घर में बेचने जाएगा, तो उसको खेत पर माल बिक गया, और यहां पर कौन रोजाना 2 रुपए की सब्जी खरीदने जाएगा, इसको अपने घर के दरवाजे पर सब्जी मिल गई, वो सब्जी वाला आता है ठेले वाला, उसके मतलब महल खड़े नहीं हुए, वो लूट के कहां ले गया, क्या ले गया, कहां है उसके पास, लूट का माल होता ना, उसमें मुश्किल से दिन भर खाने का इंतजाम हुआ है उसका, और उसने वहां से सब्जी जाकर के आपके घर तक पहुंचा दी, क्यों आप जाते थे उतने का पेट गला के आ जाते और आपका 2 घंटे खराब होता, तो ये तो सेवा है जिसको आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके चित्त में खराबी है ना, मेरे कहने का मतलब, इसलिए वो कहते हैं उसमें जब हमने कह दिया चारों प्रकार नास्ती सर्वोपि संबंधों पर में तत्व, तो उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से कोई प्रयोजन नहीं है, ये पुण्य पाप अधिकार की बात है। अब इसमें तुम वो चरणानियोग की शैली नहीं लाओ, लाओगे तो तब तो समझ में नहीं आएगा। छोड़ो ग्रहण करो। इसमें त्यागोपादान शून्य प्रसक्ति से संबंध है, क्योंकि वो छोड़ तो ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, ये दोनों बातें टकराएंगी ना फिर आपस में। वास्तव में असली चरणानियोग क्या है कि जब आपके दो कषाय का अभाव है, दो कषाय माने अनंतानुबंधी और अप्रत्याशानुबंध, अमित्रत्व का अभाव होगा तो तेरा बाहर में आचरण कैसा होगा। तो आलू नहीं खाना चाहिए, नहीं रात्रि में नहीं खाना, तुम आलू नहीं खाएगा, जमी के अंदर नहीं खाएगा, रात्रि में नहीं खाएगा, ऐसे अंदर में परिणति होती है तो बाहर की ऐसी परिणति होती है। तो ये असली कर्चरणानी योग है, लेकिन उसकी भाषा ये हो गई तो ये नहीं खाना ये खाना ऐसा आसन है तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसे खाने की क्रिया के कर्ता बन गए। वो अध्यात्म से अवरुद्ध चरणानियोग होना चाहिए ना, तो उसकी क्रिया के कर्ता है ही नहीं तो ये खाओ और ये मत खाओ अभी कहां से आई बात। उसका राग इतना मंद हो जाएगा कि किसी भी पेड़ को जड़ से उखाड़ के नहीं खा सकता वो, ख्याल में आएगी ना। असली स्वरूप तो उसका वो है, तो शास्त्रों में वैसे ही बहने हैं कि पहली प्रतिमा में क्या होता है, दूसरी प्रतिमा में क्या होता है, तीसरी प्रतिमा का अनुवृत्त में क्या होता है, महावृत्त में क्या होता है, वो वही वर्णन है। अब ऐसे ही कि जिसने देव सास गुरु के माध्यम से ये वीतरागी तत्व ज्ञान समझा है तो उन्हें उनकी महिमा आए बिना रहेगी ही नहीं, मन में बहुत अंदर से उनके प्रति गीलापन का भाव उनके अंदर रहेगा ही नहीं, और वो इतना अधिक होगा कि वाणी में भी फूटे बिना नहीं रहेगा और माथा भी झुके बिना नहीं रहेगा। वस्तु स्थिति तो ये है। अब जैसे कहते गुरु जी को नमस्कार करना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए, उनको प्रणाम से बोलना चाहिए, और उनको ऐसे करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो भाषा ऐसी आती है। तो अंदर में जो विनय भाव हे देवदेव की भाषा कैसी आती थी कि ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा भक्ति का किए बिना भाव आए बिना रहता नहीं, क्या मनराजों को भी रोजाना स्थिति बंदना का भाव आए बिना रहता नहीं, ये कहते कि नहीं, और उसमें प्रमति भी होगी। और चलना जो की भाषा ऐसी है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो भाषा में कितना फर्क पड़ता है। अब लोग अपना प्रचार करने जाओ तो हमें या फिर उसमें की शाखा खोलो, देखो रोजाना आपको मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, तो शास्त्र प्रवचन सभा चलानी पड़ेगी, तो उसमें रोजाना प्रवचन सुनने आना पड़ेगा, तो तुमको ये करना पड़ेगा। अपन भाषा ऐसी बोलते ना, ये असली स्थिति तो क्या है कि तुम ऐसे जो धर्म की रुचि वाले जीव है संकेत हो जाओ, अपने बैठ के पढ़ोगे तो तुम आना क्यों पड़ेगा, हम आएंगे ना, हम पूजा करेंगे ना, हम क्लास चलाएंगे ना, समझे ना, ये पड़ेगा तो उसी कोई तनख्वाह पर मिलनी नहीं है, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। आपको यहां रहते हो तो क्या क्या करना पड़ता है बेटा बोलो। ये सही है कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, यदि ऐसा महसूस करो तो समझो कि हम जेल में हैं, कि अभी को तो 6-7 बजे उठना पड़ता होगा, हमें 5 बजे उठना पड़ता है, कभी उनको कितना ही काम करना पड़ता है, लेकिन पढ़ना तो नहीं पड़ता ना, तुम्हें तो पढ़ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और नहीं तो ये भी कह सकते हो हम सुबह 5 बजे उठते हैं, गुरुदेव जी का टेप सुनते हैं, तो यहाँ हॉल में आते हैं, वही प्रोटीन सुनते हैं, तो पूजा करने जाते हैं, फिर गुजरते हैं, क्यों नहीं ये ऐसा होता है। बात तो ये है ना, लेकिन भाषा तो दो तरह की हो जाती है, फिर जैसी भाषा बोलते हैं धीरे धीरे भाव भी गड़बड़ हो जाता है, क्लास में तुम्हें आना पड़ता है कि तुम क्लास पढ़ने आते हो। यदि ये बात सही है कि तुमको शांति जी की क्लास में पढ़ने के लिए आना पड़ता है तो चार गुना क्लास नहीं लगे तो हमारे पास दो दो रुपये आते हो तो सारे क्लास लग ही नहीं रही है, हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होते क्यों कहते हो? अंदर तुम ही चाहते हो ना क्लास वेदाना लगे और हम पढ़े और हमारी अच्छी तरह से पढ़ाई हो, फिर आना पढ़ने वाली बात क्या हो गई? अध्यापक कहे तो कहे कि मुझे आना तो अध्यापक को पड़ता है बेचारे को। क्यों साधा जी, आपको भी आना पड़ता है ना? मैं नहीं आता तो तुम उस पर स्पीकर से सुनना पड़ता होगा तो चाहे मैंने भाषा में कितना अंतर आ गया। जो हमारी करने धरने की भाषा इतनी विकसित हो गई है कि जब हम नहीं करने की बात कहते हैं, अकर्ता स्वभाव की बात कहते हैं, तो उसे कहने में हमें पसीना छूटता है। ऐसे पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, हमारी बिल्कुल विरुद्ध जाति के हैं, शत्रु हैं, उनको हमने ना आज तक किया नहीं है ना करना है, वस्तु की स्थिति ऐसी है। अब उसमें ये करो ये नहीं करो ये नहीं करो, उनमें से हमने छांट लिए दो तरह की चीजें। जब वो औरतें सब्जियों में से बुरी सब्जी में से दो अच्छी सब्जियां छांट लेते हैं, दस गायों में से एक अच्छी सी भैंस छांट के ला सकते हो? गुरुदेव का उदाहरण है जी, गुरुदेव ऐसा कहते थे कि दस पारियों में से एक पारा छांट के लाओ, पारी बनिए तो है ही नहीं। जब वो कर्म किए ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, भोग ही नहीं सकते हैं, तो इसे भोगना चाहिए इसे नहीं भोगना चाहिए, एक राय कहां से? ये पूरा कर्ता कर्म का अधिकार की तौन है। देखो अब सबसे पहले ये तो बने, पहले ये कलश तो सोमा तो पड़ गया ना, तो तगत कर्म स्वभाव स्वरूप भेद तो दुपय काम गत वेद के मपान अयम गलत तो निर्भर मोह रजा अयम स्वयं मुदे चर वेद सुधा प्रवाह। कहते हैं एक शुभ और अशुभ के भेद से दो पने को जो कर्म प्राप्त हुआ है वो तो एकम उपानयन उनको एक करते हुए, बस कर्म कर्म है, ख्याल में है ना, उसमें कोई भला कर्म बुरा कर्म ऐसे कर्म के कोई भेद होते नहीं। और अंदर में जो सुधा वेद सुधा प्रवाह वेद रूपी सम्यक ज्ञान रूपी जो अमृत एकदम प्रकट हुआ है, समझो ना, उससे मोह की रज साफ हो जाए। ऐसा जो ज्ञान है उसको मैं नमस्कार करता हूं। ये तो ये था तो शुभ और अशुभ के भेद से दो पंक्ति का अर्थ पूछता हूं, सब जने सोचना अपने मन में, फिर मैं पूछूंगा जिससे भी जवाब देना। वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो, कौन? तो जो कर्म शुभ और अशुभ के भेद से है ना, शुभ और अशुभ के भेद से जो दो पने को प्राप्त हो, जो अभी तक दो पने को प्राप्त हुआ है, वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो, तो दो पने को प्राप्त हो गया था ना, तो जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो वो जिसके का कौन अर्थ है? क्या कहते मन में सोचना, बोलना नहीं, मैं पूछूंगा फिर सर क्या वो कौन सी चीज है। देखो फिर दो पंक्तियां पढ़ता हूं, अब ध्यान देना। सुर अर असुर के भेद से जो दोपने को प्राप्त हो वह कर्म जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। वो जिसके उदय से एकता को प्राप्त होते हैं वो कौन है, किस चीज का उदय होना है, ख्याल रहे ना बात। तो वो नीचे उदरम वह सुधा निर्भर ज्ञान ही, वो ज्ञान का जो झरना झर रहा है अमृत का तो उसके उदय से प्राप्त होता है। जो तुम्हें दो प्रकार के कर्म के भेद हुए हैं ना, जो कर्म दो वो कैसे हुआ था, अज्ञान से, और अब जो दो एकता को प्राप्त कैसे होंगे, सुधा निर्भर ज्ञान से। ये इसका कर्ता और क्रिया की बात है। जब मोह रज का नाश कर, वो जिसके उदय से प्राप्त हो वो जो मोह रज का नाश कर सम्यक सहित वह स्वयं ही जब मैं उदय को प्राप्त हो कौन, वह सुधा निर्भर ज्ञान। आगे अर्थी को समझ में, मैं उस ज्ञान को नमस्कार करता हूं कि दो प्रकार अज्ञान के कारण कर्म दो प्रकार का हो गया था, वो कर्म दो प्रकार का नहीं रहे तो एक प्रकार का हो जाए, ऐसे में सबने ज्ञान को नमस्कार करता हूं। अब इसमें ज्ञान को तो नमस्कार दिया वो तो ठीक है, अपने ही ज्ञान को नमस्कार कर रहे कोई खुद ही, कौन कर रहा है, ज्ञान ही कर रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन बात ये है कि जिसने शोर असुर का भेद किया उसका नाम है अज्ञान, और जिसने दोनों में एकता स्थापित की उसका नाम है ज्ञान। यथार्थ हो गया ना। अब तीसरा कि ये पूरे पुण्य पाप अधिकार में क्या बताएंगे, ये बात इस कलश में बता दी। अब हर पंक्ति में आपको ये खोजना है कि पुण्य पाप का द्वैत नहीं, पुण्य पाप में अद्वैत खोजना है। क्या खोजना है कि कहीं भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं खड़ा हो कि इस कर्म में से एक करने लायक हो एक करने लायक नहीं है। ये अपना आलू तो कोई खाता नहीं है ना, तो बाजार में जाओ तो जो आलू का ढेर लगा हुआ ना उसमें अच्छे अच्छे आलू छांट के लाना, क्यों तो अच्छे बुरे तो होंगे ना उसमें। जब हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है तो उनमें अच्छे बुरे के छांटने से हमें क्या मतलब है, क्यों। गवर्नमेंट ने एक नियम पास किया भी पुस्ता, क्योंकि तो आलू और प्याज के भाव बहुत बढ़ जाते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला हो जाता है, और गवर्नमेंट तो चली जाती है उसकी वजह से। तो जितने बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर जैसे, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, राजधानियां हैं, उन सबके चारों तरफ 50 किलोमीटर एरिए में आलू और प्याज और लहसुन इनकी फसलें स्पेशल उगाई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिससे उनकी कभी कमी ना हो। भले ही तुम गेहूं घी कमी हो जाए तो उससे कोई तुम्हारा भी जाने वाला नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन इनकी वजह से गवर्नमेंट चली जाती है, इसलिए ऐसा हमने प्रस्ताव पास किया। और अपन को कितना फायदा होता है, मैंने अपन चारों तरफ से आलू प्याज लहसुन से जो जाएंगे कोई कोई जनता आएगी अपने चारों तरफ से, जैसे उमड़ी राजों के चारों तरफ वो दिया था ना, तो उनको जेल में डाल दिया था। तो ये कह रहे हैं ये कर्म ऐसी है ना, आलू जैसे ही है ना, तो उनमें अच्छे बुरे का भेद जो एकता को बना, जो एकता करे उनमें जो ज्ञान है और जो भेद डाले वो अज्ञान है। नहीं साहब फर्क तो है, आप कहते हो विवाद तो ठीक है, लेकिन पुण्य पाप में फर्क तो है, पुण्य पाप में फर्क तो है। आप ऊपर बैठे हो नीचे बैठे, यदि पुण्य पाप में ऐसा फर्क नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, ऐसे थोड़ी फर्क तो है। वे कहते हैं ये समय सार का पुण्य पाप करने का अधिकारी नहीं है। ये तो ये विषय को पूरे पुण्य पाप अधिकार में यही समझाएंगे, हर दिन के व्याख्यान में ये बात आनी चाहिए, तर्क से तीसरे आगम से क्या, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है।
तो दोनों बंद हैं, बंद नहीं। वो पुण्य बना के पाप बना, इसे विवेक की भाषा में दे भावे तीर्थंकर गोत्र बना है। एक तुम्हारे उसमें योग सार में एक गाथा है, क्या लिखा कि पुण्य पाप कर्म को पाप कहता सारा लोक, वो पुण्य कर्म भी पाप है, जाने ज्ञानी को बिल्ला कोई है ना, ऐसा बिल्ला कोई ज्ञानी है कोई जानता है कि पुण्य भी पाप है। मैं कहता हूं पुण्य भी पाप है तो अति है, हम तो कहते दोनों एक है, वो खत्म यही तो रहा। क्यों हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो भी बुरा है, हम तो कहते हैं जो भी अच्छा है, अरे अच्छे बुरे का भेद करना बुरा है। प्रशांति जी ये कह रहा हूं, मेरा पूरे पोषण का सार इतना है कि इसमें अच्छे बुरे का भेद करना निर्भर है। देखो वो कौन सी गाथा है, बंद कहा ये पेन विषम बाधनी हुई, उसमें भी मेरा यही कहना है कि बंधित बंधाए आत्मा एक एक झगड़ा है, बंधा है वो झगड़ा है, छूटा है वो झगड़ा नहीं है, कि बंधे वो छूटने की चर्चा ही बंध की कथा, बंध की माने बंध और अबंध दोनों की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। बंध कहा ये व्यक्ति विभक्त, जब ये तत्व है उसमें बंध की कहानी ये विसंवाद पैदा करने वाली है। क्योंकि पुण्य और पाप में एकत्व है, दोनों कर्म है, तो इसमें भेद की कथा यही पाप है, यही छोटा काम है, यही हमारी दिशा को वो गड़बड़ कर देता है। अब ऐसा नहीं भाषा नहीं बोलो कि दोनों ही बुरे हैं, फिर एक कपिल से दोनों ही अच्छे हो जाएंगे, तो दोनों ही मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं उनका कर्ता नहीं हूं, मैं उनका भोगता नहीं हूं, मेरे उनके बीच में बजट की दीवार है, इससे मुझे उसे उनसे कोई मतलब नहीं है, और उनकी डिटेल में अच्छा है कि बुरा है उसमें जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अरुचि भाव कराना है ना उससे, और तुमको भेद करके तो आदम से अपनापन और आदम से परायापन स्थापित करना चाहते हो, ये उचित नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार की पूरी उसकी पुण्य पाप अधिकार का ये है। विनाशी दास जी ने नाटक समय साल लिखा तो ये ऊपर लिखा ना पुण्य पापाधिकार, और उसमें अधिकारों के नाम आपने देखे कैसे लिखे, क्या उसने पुण्य पाप एकत्व द्वार, पहले तो उसमें भी अधिकार नहीं लिखते हैं, हर जगह द्वार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं द्वार, द्वार में नाटक की स्टेज है ना, द्वार है ना, तो पुण्य पाप के द्वार से भी आए हैं, ये रास्ता तो दरवाजा उनके नाम पुण्य पाप द्वार रखा, तो उसमें तो ये रखा कर्ता कर्म द्वार ऐसा लिखा, जीव जीव अजीव द्वार इसमें लिखा, पुण्य पाप द्वार नहीं, पुण्य पाप एकत्व द्वार ऐसा लिखा, क्या कि दोनों पुण्य उसमें छंद भी उनका बहुत बढ़िया है बनासी दास का, इस संधि का छंद है। देखो तुम्हारे पास एक किताब है तो 299 पेज निकालो, कर्ता क्रिया कर्म को प्रगत बखान, कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, इसके मर्म को मैंने प्रगट रूप से मूल रूप से कह दिया। मैंने ये पंक्ति कर्ता कर्म अधिकार का समापन की पंक्ति है, और अब वर्णो अधिकार है पुण्य पाप समतुल, पुण्य पाप दोनों समान हैं, अब इस बात का अधिकार हम कहते हैं है? पुण्य पाप देव कर्म बंध रूप दुर्मान, शुद्ध आत्मा दुर्लहो नमो चरण हित जान। अब जो है पुण्य पाप देव गुण बंध रूप है दुर्मानी,
मैं इससे एक कदम आगे की बात करता हूं। ये भाषा ऐसी बन गई, मैं कहता हूं दुर्वसुर से हमें मतलब क्या है, एक सुलभ है एक दुर्लभ है, हमें चाहिए ही नहीं, तो इसमें दुर्लभ और सुलभ का भेद करने से क्या फायदा है। क्यों तो बाजार में आजकल प्याज मिलता ही नहीं है, दुर्लभ हो गया, पहले तो बहुत सुलभ था, अपन को चाहिए भी ना, तो हमको दुर्लभ और सुलभ के भेद में जाने का क्या कारण है बोलिए। यदि हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें या उपादेय बुद्धि या हेय बुद्धि, या कुछ में उपादेय बुद्धि और कुछ में हेय बुद्धि है ना। अब दिक्कत यह है कि ना तो श्रोताओं की इस भाषा की बारीकी को समझते हैं और वक्ता भी नहीं समझते हैं और लेखकों ने भी इसका ध्यान नहीं रखा है, क्या दिक्कत दे रहे समझे ना। इसका एक उदाहरण और दूंगा मैं, दो द्रव्यों के बीच में जो पृथकता है ना, जो भिन्नता है उसे पृथकता कहते हैं, और एक द्रव्य के द्रव्य गुण के बीच में जो भिन्नता है उसे अन्यता कहते हैं। और प्रतिन साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया है ना, लेकिन हम कहां विवेक रख पाते हैं प्रयोग में। जब मैं 12 भाव में लिख रहा था तो मेरे को इस बात पर विकल्प आ गया, अपन इसको पूरा ध्यान रखेंगे क्या। तो जब वो समर भाव में लिख रहा था तो उसमें ये पंक्ति आई ना, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, देह से तो आत्मा भिन्न है ना, परवृद्ध है, फिर हे राज जिसमें किंतु जो उस राज से भी अन्य है, अन्य ठीक है ना, राज से है अन्यता और देह से है भिन्नता, यहां तक तो सेटिंग बैठ गई। अब गुण भेद से भी भिन्न है, अब गुण भेद से तो अन्य है, अब गुण भेद से भिन्न कहने में अनुप्रास बनता है, लय में बोलने में बहुत सुविधा होती है आप सुन रहे हैं ना, और अन्य कहने में वो सुविधा नहीं होती है, तो फिर वो निकलता है अन्य लक्षण के भिन्न। बोलो गुण भेद से भी भिन्न है पर्याय से भी पार है, एक उच्चारण में ये बढ़िया है, गुण भेद से भी अन्य है पर्याय से भी पार है, अच्छा है। बोला भेद के साथ भिन्न अपने आप में वो उसका साम्य बनता है, तो फिर जब खराब होगा फिर जान लो अपन तो अन्य ही लिखो। लेकिन हम आगे बढ़े और लेखों भी देखी और सब जगह देखी तो वह पूरी तरह बचना तो संभव नहीं है, तो फिर अपन इस अनुप्रयास को क्यों भंग करें। मैंने ऐसा जान करके भी फिर उसको हमने वही की भिन्न गुण भेद से ही भिन्न है लिख दिया। जब भी पढ़ते हैं हमारे दिमाग में तो वो आ जाता है, तो हमने चिंतन किया था, हरे के दिमाग में तो नहीं आएगा, और हमें समझाएंगे तो कहीं साहब ये गलत है सही है, गलत है सही है, आप समझे था कैसे क्या क्या मजबूरी होती है। और एक और बताता हूं आपको, क्या हम बचपन से ही जब मैं कलकत्ता में प्रश्न करने जा रहे थे न्यायाधीश में पढ़ता था तब 16 वर्ष की उम्र में, तो वहां पर भी मैंने ये बात कही थी, कौन सी कि मैंने कहा कि ये बात भगवान ने खुद ऐसा किया है ये किया है, ऐसा भी उसमें लिखा है कार ने जिनवाणी में, जिनवाणी में ऐसा लिखा हो नहीं सकता है। तो गया तो मंदिर में से जिनवाणी उठा लाया, और जिनवाणी में तो वो सब छपी रहती है ना, भक्ति भक्ति करता बात भी, तो वो हाथ में मुझे दे दी साहब ये लिखा, तो मैंने कहा जिनवाणी है, तो जिनवाणी नहीं है उसे लिखा रहा बृहद जिनवाणी संग्रह है ना। मैंने कहा भैया कि भगवान ने पूजा बना के रख दी है तो हमारी पूजा ऐसे करना, ये तो भक्तों की वाणी है। अरे जिनवाणी तो समय सार है, प्रतिन सार है, प्रत्यार सूत्र है, घुमट सार है, वो है जिनवाणी। यानी मैं तब मेरी शादी नहीं हुई थी, 16 वर्ष की उम्र थी, न्यायाधीश की परीक्षा देने कलकत्ता गए थे भूलगछिया के मंदिर में, वो केवल इस बात पर झड़प हुई थी और मैंने कही थी, मैंने कितने दिन हो गए और फिर अपने यहां से जिनवाणी छपी तो फिर वहां ये निकल जाएगा नाम क्या रखे, जन्मा जी नाम ही है, पूजन संग्रह देवी नाम रखे, दूसरे रखे जा सकते हैं या नहीं क्या? तो फिर यही समस्या खड़ी हुई कि सारा देश इस पूजन की किताब को दिनवाणी के नाम से ही जानता है। देखो अब वो दिनवाणी नहीं है, उसे सारा देश दिनवाणी के नाम से जानता है और वो समय सार को दिनवाणी के नाम से नहीं जानता है। जब प्रवासी तो समय सार का गुटका बनाओ ना 415 ग्रंथों का और जेब में रख लो तो वो गुटका वो किताब वो दिनवाणी बन गई। लोग पूछते आएंगे कि आपके यहां दिनवाणी है मिलती है या मिलती है तो फटाफट दे दो, और आपके कहीं में हमारे पूजन संग्रह नहीं मिली, पूजन संग्रह नहीं, दिनवाणी थी, दिनवाणी थी, दिनवाणी थी, दिनवाणी थी, क्यों बोलो? तो तब से बचपन से जिस बात को हम सही नहीं मानते थे, जब वो छुपाने का प्रसंग आया तो उसका नाम दिनवाणी ही रखा गया। तो आप क्या समझे क्यों? कि फिर धर्म के प्रवचन में मैंने लिखा कि वक्ता होती है का भाव होता है और श्रोता के की भाषा होती है। तो जगत जिस भाषा में समझता है हमको उस भाषा में ही समझाना पड़ता है, उस भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए वो भाषा दरमान योग में बैठी चल गई। लेकिन जब अपन मरम समझने बैठे हैं और मरम समझाने बैठे हैं तब तो हमें खोल के वो बात करनी पड़ेगी ना, ये सब विद्वानों को तो समझनी पड़ेगी ना एक एक उसकी गहराई से। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम अधिकतम प्रयोग वैसे ही करें तो ये हमारी श्रद्धा रहेगी। जैसे कि पंच कल्याण को में हमें कहते भगवान का जन्म हुआ, भगवान का की दीक्षा, तो मैं बिल्कुल मैं कहता था भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो जब केवल ज्ञान होने के बाद बनते हैं, जन्म के हिसाब से भगवान बाल में पढ़ा था ना, भगवान जन्म के नहीं बनते हैं लिखा था ना हम, तो ये माने ही नहीं। अभिनंदन जदी भाई ने समझाया कि भाषा सुधारो, अभय कुमार जी को कहा कि भाषा सुधारो, नहीं जनता तक कैसे पहुंचेगी ये बात? तो अब सब बोलने के बालक का जन्म हुआ, ऋषभ का नाम ऋषभ देव रखा गया, बालक का जन्म हुआ फिर मुन्ने राजकुमार ने दीक्षा ली, फिर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, फिर वो भाषा तो सब मैंने लड़ लड़के के वो सुधरवाई है, अब वो भाषा चलने लगी वैसे धीरे धीरे, तो वो प्रतिपादन भी करने लग गए कि वो जन्म भगवान का नहीं होता है, धीरे धीरे सब बच्चे बच्चे में बैठ खल गई क्या बात है? तो मेरे कहने का मतलब हमको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे तो कुछ अपनी बात को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर जगह समझौते समझौते से काम नहीं चलेगा, समझना तो पड़ेगा ही, और फिर जितना भी हम प्रयोग में ला सकते हैं उतना रखो। अभी ये आपकी जनवाणी सब छपे ना कौन सा भक्ति संग्रह तो होती ना कई 500 पेज के छाप दी थी, तो मैं तो दादा से कह के उसको तो बनफेड करवा दी है, तो सब कर्ता बात संबंधी संदेश में से सब हटा दिए है भजन संग्रह में से। अब उसमें दिक्कत यही है कि मान लो भूदरदास जी के हैं, देव राम जी के हैं, तो सब दौलत राम जी के हैं, 50 बहुत ही बढ़िया है, और 50 ऐसे हैं कि जिसमें भगवान उस जमाने में चलता होगा तो करता बात के हैं। मैं क्या तो ये अभी उस झंझट में मत पड़ो, तुम तो जो चीज बढ़िया है वो रखो, बच्चों से वही कहो, वही बोले, वही भक्ति में बोले। इस किताब में नहीं होंगे तो बोलेंगे कहां से, और किताब में होंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं? तो एक तरीके से इंडायरेक्ट तो सपोर्ट हो गया ना, छोटी कर दी, कितनी कर दी थी 110 की रही है, अच्छी गई 300 की है, जितने हैं उनका प्रयोग तो हम जो करेंगे वो करें ना, क्योंकि जैन दर्शन में कम से कम कर्ता नहीं माना है भगवान को, ये तो ईश्वर कर्ता नहीं है भगवान के, तो आप पढ़ते ही हो ना, पढ़ोगे ना 5 साल में, तो फिर व्यवहार के नाम पर नहीं वो तो व्यवहार से नाम से चल करके तो वही व्यवहार ही व्यवहार रह जाता है, निश्चय गायब ही हो जाता है, इसलिए उसे गंभीरता से हमें समझ करके निर्णय करना चाहिए विवेक से।